एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, रिचर्ड रूसो का ब्रिज ऑफ साइज।
जी, 2007 में आया ये उपन्यास और रिचर्ड रूसो पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, तो आप समझ सकते हैं कि लेखन का स्तर क्या होगा।
बिल्कुल, रूसो जाने जाते हैं छोटे अमेरिकी शहरों, वहां के आम लोगों की जिंदगियों को बहुत ही हमदर्दी से दिखाने के लिए।
हाँ, उनकी कहानियों में आपको सच्चाई मिलेगी, थोड़ा हास्य भी और एक गहरी मानवीय समझ।
और वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि आप कहाँ से हैं, वो जगह आपकी किस्मत तय करती है। ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, जैसा वो कहते हैं।
सही कहा। और ब्रिज ऑफ साइज तो जैसे उनके सारे पसंदीदा विषयों का संगम है। छोटा शहर, परिवार, क्लास का फर्क, किस्मत, सब कुछ।
इसे आलोचकों ने भी बहुत सराहा था, मैन बुकर की लॉन्ग लिस्ट में भी था ये।
जी,
तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। यादें कैसे काम करती हैं, हमारी पहचान कैसे बनती है, और क्या एक ही जगह पर पूरी जिंदगी गुजार देना ये जीत है या कुछ और।
बड़ा सवाल है, क्या जड़ों से जुड़े रहना अच्छा है या एक बंधन। ये उपन्यास इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है।
और ये सवाल हमें ले जाता है थॉमस्टन, न्यूयॉर्क, एक काल्पनिक शहर है ना।
हाँ बिल्कुल, एक पुराना औद्योगिक शहर जो अब धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है, और शहर के बीच से बहती है मोहॉक नदी।
जो सिर्फ नदी नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक तरह की बंटवारे की रेखा है। ईस्ट साइड जहाँ थोड़े ठीक ठाक मध्यवर्गीय लोग रहते हैं, और वेस्ट साइड जहाँ गरीबी है, थोड़ी मुश्किल जिंदगी है।
और हमारे मुख्य पात्र लुईस सी लिंच यानी लूसी, वो इस साइड से हैं।
जी, 60 साल के हैं लूसी, बहुत ही शांत, नेक, सीधे साधे इंसान। पूरी जिंदगी थॉमस्टन में ही गुजारी है।
पिता की दुकानें संभालते हैं ना, कन्वीनियंस स्टोर्स।
हाँ, 3 कामयाब दुकानें हैं कस्बे में, उनकी बहुत इज्जत है, एक तरह से समुदाय के स्तंभ है वो।
लेकिन खट से शांत दिखने वाले पानी के नीचे लहरें होती हैं, लूसी के साथ भी ऐसा ही है।
बिल्कुल, ऊपर से वो जितने शांत दिखते हैं, अंदर उतनी ही बेचैनी है। कुछ अनसुलझे सवाल, परिवार से जुड़े कुछ राज।
और वो स्पेल्स, उनका जिक्र करना जरूरी है।
हाँ, वो बचपन से ही उन्हें अजीब से दौरे पड़ते हैं, स्पेल्स कहते हैं वो उन्हें, जैसे दुनिया भर का दुख दर्द उन पर हावी हो जाता हो, एक बोझ की तरह।
ये दिलचस्प है, ये स्पेल्स जैसे दिखाते हैं कि वो दूसरों के दुख को कितनी गहराई से महसूस करते हैं।
हाँ, खासकर अपने बचपन के दोस्त बॉबी मार्कोनी के दुख को। ऐसा लगता है जैसे उनकी अच्छाई की भी एक कीमत है जो वो इन स्पेल्स के जरिए चुकाते हैं।
तो कहानी में मोड़ कब आता है?
मोड़ आता है जब लूसी और उनकी पत्नी सारा पहली बार यूरोप जाने का प्लान बनाते हैं, खास तौर पर वेनिस, इटली।
अच्छा, 60 साल की उम्र में पहली यूरोप यात्रा।
हाँ, और इस यात्रा का एक खास मकसद भी है, लूसी के बचपन के दोस्त बॉबी मार्कोनी से मिलना।
ओ, वही बॉबी जो वेस्ट साइड से था।
जी वही, जो थॉमस्टन से भाग गया था और अब एक जाना माना पेंटर बन गया है, नाम भी बदल लिया है, रॉबर्ट नूनन, और वेनिस में रहता है, दुनिया से थोड़ा कटकर,
आत्मनिर्वासन में कह सकते हैं।
हाँ कह सकते हैं। लेकिन वेनिस जाने का ये प्लान, ये लूसी को अनजाने में एक दूसरी ज्यादा मुश्किल यात्रा पर ले जाता है,
अपने अतीत की यात्रा पर।
बिल्कुल, उसे अपनी भूली बिसरी यादों को फिर से खंगालना पड़ता है, अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को दोबारा समझना पड़ता है।
और यही वो सवाल फिर से सामने आता है, सार्थक जीवन क्या है, बॉबी की तरह भाग जाना और खुद को दोबारा गढ़ना, या लूसी की तरह टिके रहना,
वफादारी निभाना, प्यार करना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं।
लूसी का किरदार, उसमें एक अजीब सी कशिश है ना?
बहुत, रूसो ने उसे बड़ी ईमानदारी से गढ़ा है। उसमें गहरी इंसानियत है, एक शांत नैतिकता है, उसकी जड़ें थॉमस्टन में बहुत गहरी हैं।
शहर, परिवार, काम, सबके प्रति एक कर्तव्य की भावना है।
तो उसकी यात्रा बाहरी नहीं, अंदरूनी है।
हाँ, वो अपने अंदर उतरता है, उसे कई कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है,
अपने माँ बाप की शादी का सच, पिता के कुछ नैतिक समझौते, बॉबी के साथ उसकी दोस्ती की असलियत, ये सब परत दर परत खुलता है।
क्या वो बदल जाता है इस यात्रा में?
बदलता नहीं है शायद, पर वो उस जिंदगी को ज्यादा गहराई से समझता है और स्वीकार करता है, या शायद जिसने उसे चुना था।
तो ये तो हुई लूसी की बात, लेकिन उसकी पत्नी सारा, वो भी क्या लूसी की तरह ही थॉमस्टन से जुड़ी हुई थी?
सारा लिंच, वो भी बहुत अहम किरदार है, वो बुद्धिमान है, दुनियादार है, लूसी से ज्यादा। वो लूसी की नेकी की कद्र करती हैं, पर साथ ही उन्हें छोटे शहर की बंदिशें भी महसूस होती हैं।
और बॉबी मार्कोनी से भी उनका कुछ कनेक्शन था?
हाँ, जवानी के दिनों में एक बौद्धिक और शायद भावनात्मक जुड़ाव था। बॉबी का शहर छोड़ना उसके लिए जैसे वो रास्ता था जो उसने नहीं चुना।
तो उसके मन में भी क्या होता अगर वाले सवाल चलते रहते होंगे?
बिल्कुल। तो सारा की यात्रा भी एक तरह से सुलह की यात्रा है, बॉबी को लेकर अपने ख्यालों से जूझना और आखिर में लूसी के लिए अपने गहरे प्यार को पहचानना।
वो लूसी का सहारा भी है और उसे चुनौती भी देती है।
हाँ, उसे अतीत का सामना करने के लिए उकसाती भी है। उसका थॉम्पसन में रुकना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था, प्यार का फैसला।
और इस त्रिकोण का तीसरा कोना बॉबी मार्कोनी, जो अब रॉबर्ट नोनन है, वो तो पलायन का प्रतीक है।
बिल्कुल। वेस्ट साइड की गरीबी, हिंसा, उस माहौल में पला बड़ा। टैलेंटेड था, कलात्मक था, पर अंदर एक बेचैनी थी भाग जाने की।
और वो भाग गया थॉम्पसन से, अपने अतीत से।
हाँ, नाम बदलकर, पहचान बदलकर वेनिस में एक नई जिंदगी शुरू की, शोहरत पाई। लेकिन
अतीत पीछा नहीं छोड़ता।
सही कहा। वेनिस में रहकर भी थॉम्पसन एक भूत की तरह उसके पीछे लगा रहता है। शायद उसकी कला की ताकत भी उन्हीं जड़ों से आती है जिनसे वो भागा था।
तो उसकी यात्रा भी अपने अतीत से टकराने की है?
हाँ, न चाहते हुए भी वो लूसी की जिंदगी का एक स्याह आईना है, वो रास्ता जो लूसी ने नहीं चुना।
इन तीनों की कहानी के पीछे लूसी के माँ बाप की कहानी भी चलती है, बिगलू और टेसा।
जी, और वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, कहानी के रहस्य के केंद्र में है वो।
बिगलू, लूसी के पिता, वो कैसे थे?
वो जैसे युद्ध के बाद वाले अमेरिकी आशावाद का चेहरा थे, हमेशा खुश, मेहनती। लेकिन इस हसमुख चेहरे के पीछे कई परतें थीं।
मतलब
परिवार और कारोबार बचाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन पर सवाल उठ सकते हैं। शहर के कुछ राज, मार्कोनी परिवार से उनका रिश्ता, ये सब धीरे धीरे खुलता है।
और माँ टेसा?
टेसा ज्यादातर खामोश रहती हैं, जैसे कोई गहरा दुख या राज छुपा रखा हो। सालों तक एक कमजोर कर देने वाली बीमारी से जूझती रहीं।
उनके अतीत में भी कुछ है?
हाँ, जब उनका अतीत खुलता है, मार्कोनी परिवार से उनका रिश्ता, उनकी बीमारी का शहर की टैनरी यानी चमड़े की फैक्ट्री के प्रदूषण से संभावित संबंध, तब कहानी का भावनात्मक कोर सामने आता है।
तो ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी के रहस्य और फैसले अगली पीढ़ी को प्रभावित करते हैं।
बिल्कुल, उनकी कहानी के बिना लूसी की कहानी अधूरी है।
चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1950 के दशक में, जब ये तीनों बच्चे थे।
हाँ, लूसी, सारा और बॉबी नदी के दोनों किनारों से थे। क्लास का फर्क था, पर दोस्ती गहरी थी।
उस बचपन की कुछ खास घटनाएं याद आती हैं?
जैसे कैथलिक स्कूल में एक सख्त नन से उनका सामना, और शहर की टैनरी की वो गंध, नदी का जहरीला होता पानी, ये सब जैसे आने वाले कल का इशारा थे।
और लूसी के स्पेल्स की शुरुआत भी तभी हुई थी?
हाँ, अक्सर तब जब वो दूसरों को, खासतौर पर बॉबी को, तकलीफ में देखता था।
कहानी में एक अहम मोड़ आता है जब बिगलू बॉबी के हिंसक पिता को बचाता है।
जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इससे एक अजीब सा अनकहा कर्ज पैदा होता है। बिगलू मार्कोनी परिवार की थोड़ी मदद करने लगता है।
लेकिन ये मदद भी तनाव पैदा करती है।
हाँ, और ये बात लूसी को सालों तक परेशान करती है। और लगभग इसी समय टेसा की वो रहस्यमयी बीमारी शुरू होती है।
क्या टेसा और बॉबी की माँ के बीच कोई कनेक्शन था?
उपन्यास इस तरफ इशारा करता है, कोई पुराना राज, कोई साझा दुख जो शायद शहर के उन नैतिक समझौतों से जुड़ा था जिन पर सब चुप थे।
फिर ये तीनों बड़े होते हैं और रिश्ते उलझते जाते हैं।
हाँ, जवानी में सारा जैसे लूसी की स्थिरता और बॉबी के आकर्षण के बीच फंस जाती है।
और फिर बॉबी भाग जाता है
अपने पिता से एक भयानक झगड़े के बाद। हमेशा के लिए थॉम्पसन छोड़ देता है, सारे रिश्ते तोड़कर रॉबर्ट नूनन बन जाता है।
बॉबी के जाने के बाद
लूसी और सारा करीब आते हैं, शादी करते हैं, बेटा होता है, थॉम्पसन में ही अपनी जिंदगी बनाते हैं। लूसी पिता का कारोबार संभालता है।
उन पर रुकने का फैसला ये हार नहीं थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं, एक सोचा समझा चुनाव था, स्थिरता का, जिम्मेदारी का।
और फिर कहानी वापस 2007 में आती है, वेनिस यात्रा की तैयारी।
हाँ, और ये तैयारी लूसी को रोक कर सोचने पर मजबूर करती है, अपनी पूरी जिंदगी पर। वो जैसे अपने मन में अपने जीवन का इतिहास लिखता है।
उससे अपने पिता का एक नया रूप दिखता है।
हाँ, वो सिर्फ आशावादी नहीं थे, उन्होंने मुश्किल नैतिक समझौते भी किए थे, शायद टैनरी के प्रदूषण को नजरअंदाज किया, और हो सकता है उसी से टेसा की बीमारी बड़ी हो।
और वो अपनी माँ की खामोशी को भी समझने लगता है।
जी, उनकी चुप्पी के पीछे का दर्द मार्कोनी परिवार के लिए उनकी छिपी हमदर्दी। वो अपने माँ बाप को अब सिर्फ माँ बाप की तरह नहीं बल्कि जटिल इंसानों की तरह देख पाता है।
उपन्यास का क्लाइमैक्स क्या है? क्या वेनिस में कोई बड़ा टकराव होता है?
नहीं, वैसा कुछ नहीं। क्लाइमैक्स असल में लूसी के अंदर होता है।
अच्छा।
हाँ, वेनिस की यात्रा से ज्यादा जरूरी वो यात्रा बन जाती है जो लूसी अपने मन के अंदर पूरी करता है। बरसों से दबे राज खुलते हैं, बिगलू का अपराध बोध, टेसा की बीमारी और चुप्पी का सच।
और किताब का टाइटल ब्रिज ऑफ साइज,
वो वेनिस के एक पुल का नाम है, लेकिन यहाँ वो लूसी की अपनी यात्रा का प्रतीक बन जाता है। मासूमियत से ज्ञान तक का पुल, अज्ञान से समझ तक का।
तो वो अपने अतीत से शांति पा लेता है।
हाँ, वो अपने पिता की विरासत की जटिलताओं और माँ की जिंदगी के दुख को स्वीकार कर लेता है। अब वेनिस जाना उतना अहम नहीं रहता, उसने अपनी चुनी हुई जिंदगी के मतलब और गरिमा को पहचान लिया है।
मौजूदगी की जिंदगी, गैर मौजूदगी की नहीं।
बिल्कुल, बनाने की जिंदगी, भाग जाने की नहीं।
चलिए अब जरा मुख्य विषयों पर बात करते हैं। एक तो है जगह का खिंचाव, घर बनाम पलायन। थॉमस्टन लूसी के लिए घर है, बॉबी के लिए जेल।
हाँ, क्या असली आजादी भागने में है या अपनी जड़ों को समझने में? उपन्यास इसी सवाल को उठाता है, और ये भी कि आप घर पर रहकर भी निर्वासित महसूस कर सकते हैं।
और यादें, यादों का बदलना
बहुत अहम है। ये लूसी जब कहानी सुनाता है तो वो सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो यादों को बदल रहा है, उनका मतलब बदल रहा है। परिवार के किस्सों को तोड़कर एक ज्यादा सच्ची, शायद ज्यादा दर्दनाक कहानी बना रहा है।
जैसे फॉकनर ने कहा था, अतीत कभी मरता नहीं।
ये तो अतीत होता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अतीत एक कहानी है जिसे हम लगातार खुद को सुनाते हैं।
और क्लास का मुद्दा, मोहक नदी का प्रतीकवाद।
हाँ, ईस्ट साइड बनाम वेस्ट साइड, समाज में आपकी जगह कैसे आपकी जिंदगी तय करती है, वो अनदेखी दीवारें।
नैतिकता का सवाल भी है, लूसी की अच्छाई बनाम बिगलू के समझौते।
जी, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती, सही गलत की रेखाएं धुंधली होती हैं। प्यार करने और जीने के लिए हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं।
और पीढ़ियों का असर, माँ बाप के रहस्य लूसी की जिंदगी को कैसे आकार देते हैं।
हाँ, हम सब कहीं ना कहीं अपने से पहले वालों की कहानियों के नतीजे जी रहे होते हैं।
रूसो का लिखने का अंदाज भी खास है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का मिलाजुला नजरिया।
हाँ, लूसी की आवाज हमें कहानी के दिल के करीब ले जाती है, और थर्ड पर्सन से हमें दूसरे किरदारों के मन की भी झलक मिलती है। और कहानी सीधी नहीं चलती, यादों की तरह कूदती है।
प्रतीक भी बहुत हैं, ब्रिज ऑफ साइस, नदी, टैनरी, लूसी के स्पेल्स।
जी, हर प्रतीक कहानी को और गहरा बनाता है।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास क्या कहता है?
मेरे ख्याल से ये आम जिंदगी की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो टिके रहते हैं, जो भागते नहीं। ये वफादारी, समुदाय और प्यार में मतलब ढूंढने की बात करता है।
हाँ, ये बड़े कारनामों की कहानी नहीं बल्कि शांत साहस की कहानी है, और ये हमें अपने अतीत, अपनी जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
और ये भी कि साधारण में भी कितनी असाधारण गहराई छिपी हो सकती है। शायद सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, अपने अंदर की होती है।
बिल्कुल सही कहा। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यो ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।